स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आज हम लुका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 से 14 पद का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का शीर्षक है प्रभु यीशु की परीक्षा, प्रभु यीशु का गलील और नासरत लौट आना और अपने लोगों द्वारा इनकार किया जाना तथा यीशु का अपने प्रधान कार्यालय को कफरनहूम ले जाना और वहां से अपनी सेवकाई जारी रखना। प्रिय मित्र, शैतान के द्वारा प्रभु यीशु की परीक्षा एक मनुष्य के रूप में हुई। वे मानवीय परीक्षा थी जो सर्वसाधारण रूप से हम सब के जीवन में आती है। इन परीक्षाओं में मनुष्य पर आने वाली संपूर्ण परीक्षाओं का समावेश है और इनके 3 प्रकार हैं। पहला, शैतान प्रभु यीशु को शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पत्थरों को रोटी बनाने के लिए कहता है। रोटी के साथ कोई समस्या नहीं है, रोटी जीवन का आधार है। शरीर को रोटी की आवश्यकता होती है और प्रभु यीशु भूख से पीड़ित था तो गलत क्या है? अपने बड़े सामर्थ को स्वयं की सेवा में लगाना स्वार्थी होता है। उसे इस बड़े सिद्धांत की सच्चाई को दर्शाना होगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद के अनुसार हम पाते हैं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, यह उस मूर्ख अनात्मवादी युग से विपरीत है जो केवल अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीते हैं। हमारे भौतिक समाज में आधुनिक आदमी कहता है, खाओ पियो और मस्त रहो क्योंकि कल तो हमको मर ही जाना है। मित्रों, और जहां तक मनुष्य का सवाल है, यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। स्वार्थीपन विश्वास रहित समाज का श्राप है। प्रिय मित्र, इस परीक्षा का सामना करने के द्वारा हमारे प्रभु यीशु ने इस संसार के लोकप्रिय दर्शन शास्त्र को झूठा ठहराया है। अब हम देखते हैं दूसरा, शैतान प्रभु यीशु को इस संसार के राष्ट्रों को देने की पेशकश करता है। राष्ट्र पाश्विक शक्ति और राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। युद्ध जीवन की शैली है। भीड़ को प्रेरणा देने के लिए घृणा और भय अधिक हैं। यह शैतानिक है और शैतान इन शर्तों पर संसार के राज्यों को देने की पेशकश करता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को बदलना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 10 के अनुसार प्रभु यीशु के उत्तर में अंतिम स्थिति का संकेत है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। उसके बाद प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय 3 से 5 में हमें कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। सो हम कल्पनाओं की ओर हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब हम तीसरी बात देखते हैं, शैतान प्रभु यीशु को मंदिर से नीचे गिरने को कहकर उसकी परीक्षा करता है। यह प्रभु यीशु के व्यक्ति और उद्देश्य के प्रति लोगों को प्रभावित करने के लिए तर्क के अनुसार कार्य प्रणाली लग सकता है, परंतु प्रभु यीशु सिंहासन के लिए आसान मार्ग नहीं अपनाएगा। महिमा का मुकुट पहनने से पहले उसे कांटों का ताज पहनना होगा। स्टेपलर संक्षेप में कहते हैं, परमेश्वर को अनादर करने के 2 तरीके हैं। एक, उसकी सामर्थ को नजरअंदाज करना, दूसरा उस पर अनुमान लगाते हुए मान लेना। दोनों ही पाप हैं। कुछ नहीं करना आसान है और उसके बाद मुंह चिढ़ाते हुए यह कहना कि परमेश्वर गौरव को खिलाता है और वह हमारी देखभाल करेगा, परंतु उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 19 में परमेश्वर कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। मित्र, उदाहरण के लिए विदेश में एक सेवक होने के लिए उसे अध्ययन करने के द्वारा विदेशी भाषा सीखनी होगी और तब परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। हम परमेश्वर के सहयोगी हैं, कठपुतली नहीं। एडवर्ड जडसन ने अपने पिता अडोनीराम जडसन को, जो बर्मा में बहुत दुख उठाया, देखने के बाद कहा, यदि हम बिना दुख उठाए सफलता प्राप्त करते हैं तो इसका कारण है कि हम में से पहले दूसरों ने दुख उठाया है। यदि हम बिना सफलता पाए दुख उठाते हैं तो इसका कारण यह है कि हमारे बाद दूसरे को सफलता मिलेगी। प्रभु यीशु ने झूठे और आत्मिक दिखावेपन का इनकार किया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार उसका उत्तर विध्वंसक था, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की। वास्तव में प्रभु यीशु ने अपने गांव नासरत में लोगों के बीच सेवकाई शुरू की जहां उसका इनकार किया गया और उसे बाहर निकाला गया। आराधनालय में उसने यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय उसके 1 और 2 के पूरे होने की आकर्षक ढंग से घोषणा की। प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रभु यीशु की परीक्षा पर विचार करें और लुकार्ची सुसमाचार 4 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। मित्रों, यहां पर हम पाते हैं जो हमारे सामने है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा है। सामान्य अवलोकन सुसमाचार मत्ती और मार्कुस और लुका सभी इस परीक्षा का उल्लेख करते हैं। यूहन्ना इस घटना का उल्लेख नहीं करता है क्योंकि वह प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाता है, अर्थात परमेश्वरत्व पर बल देते हुए प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। बाकी तीनों सुसमाचारों में प्रभु यीशु के मानवता पर जोर दिया गया है। मनुष्य के रूप में उसकी परीक्षा हुई। लुकार्ची सुसमाचार में उसे मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लुका 3 अध्याय उसके 38 पद में हमें मिलता है, और वह इनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का था। यह मरियम की वंशावली है जो यीशु मसीह के वंश के पीछे आदम से आती है जिसके हम सदस्य हैं। मनुष्य की तरह उसकी परीक्षा हुई, जैसे हमारी सारी बातों में उसकी परीक्षा की गई, फिर भी वह पाप रहित था। मेरे मित्रों, यीशु की परीक्षा के बारे अंधकार की शक्तियां और विनाश घेरे हुए थे। मानव मूल समस्याओं से घिरा हुआ था जो कि इस संसार की है, और उस पर उसने मानव जाति के लिए विजय प्राप्त की। मुझे मानना होगा कि मैं इसे समझा नहीं सकता, परंतु मैं आपको उसके बहुत करीब तक ले जाऊंगा और अंत में मैं आशा करता हूं कि हम कुछ सीख सकते हैं। उसके चारों ओर अदृश्य और छिपी हुई शक्तियां थी। वह अंधकार और विनाशक शक्तियों से घिरा हुआ था। उसने मानव जाति जो मिट्टी की बनी हुई है उसकी बुनियादी समस्याओं के साथ संघर्ष किया और उसने मानव जाति के लिए विजय हासिल किया। मेरे मित्र, उसने मेरे और आपके लिए विजय प्राप्त की। कई प्रारंभिक बातों को हमें अपने मन में रखना होगा, और जब हम प्रभु यीशु की परीक्षा को देखते हैं तो हमें कहा गया है कि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। परीक्षा का सामना करने के लिए मनुष्य के नाते परमेश्वर के पुत्र को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता पड़ी। और मेरे मित्र, अपनी सामर्थ्य से मैं इस संसार की परीक्षा का सामना नहीं कर सकता हूँ। रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 21 में पौलुस हमें बताते हैं, सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्या आपने जीवन में इसे सच नहीं पाया है? रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस फिर कहते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में से जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आगे हम गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 16 पद में फिर पाते हैं जिसमें पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। प्रिय मित्र, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 8 अध्याय के 2 पद में परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इसराइलियों की परीक्षा की। परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता है। हमें कहा गया है कि प्रभु यीशु की परीक्षा के पहले वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जंगल में चला। मार्कुस कहता है कि वह भेजा गया। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने परीक्षा की खोज नहीं की। यहां तक कि लूका 22 अध्याय उसके 42 में प्रभु यीशु ने गतसमनी बाग में प्रार्थना किया और कहा, इस कटोरी को मेरे सामने से हटा ले। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु की परीक्षा 40 दिनों के बाद शुरू नहीं हुई। वस्तुतः लूका हमें बता रहे हैं कि परीक्षा के बाद उसे भूख लगी। पूरे 40 दिन के दौरान शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा की। जंगल में परीक्षा के बाद भी शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा करना नहीं छोड़ा। गतसमनी बगीचे में शैतान का यह दूसरा भीषण आक्रमण था। इस अध्याय के 13 पद में लूका हमें बताता है, जब शैतान परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मित्रों, यहां पर ध्यान दें, कुछ और बात हमें समझने की जरूरत है कि शैतान एक व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि 30% से 90% सेवक कहते हैं कि वह एक व्यक्ति नहीं है। यद्यपि धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि शैतान एक व्यक्ति है। जब उसने प्रभु यीशु की परीक्षा की तो क्या वह शारीरिक रूप में आया, क्या वह आत्मा के रूप में आया, या क्या वह ज्योति दूत के रूप में आया? बाइबल हमें बताती है कि उसने आमने सामने उसका सामना किया। हमें समझने की जरूरत है कि शैतान धूर्त है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 पद के अनुसार एक समय वह एक गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और दूसरे समय वह एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान है, यदि संभव होता तो चुने हुओं को भी भरमा देता। मेरे मित्र, प्रभु यीशु की परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा शब्द का दोहरा अर्थ है। परीक्षा करने का अर्थ बहकाना और बुराई के लिए उकसाना है, और इसका अर्थ है पथ भ्रष्ट करना। यदि एक व्यक्ति को बुराई के लिए पथ भ्रष्ट किया जा सकता है तो इसका अर्थ है उस व्यक्ति में कुछ है जो उसे समर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। जब तक व्यक्ति कुछ उसे समर्पण करने के लिए प्रेरित नहीं करता तो यह परीक्षा नहीं होती। यद्यपि हमारे प्रभु यीशु में यह बात सच नहीं था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 पद में वह कह सका, मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। मेरे मित्र, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं, परंतु जब भी वह मेरे पास आता है वह हमेशा अपने पैर रखने के लिए जगह पाता है। इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय के 26 पद के अनुसार हमारा प्रभु पवित्र है, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग था। प्रभु यीशु की परीक्षा बुराई के लिए परीक्षा नहीं थी। उसके बाद परीक्षा शब्द का इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया गया, जिसे हम उत्पत्ति 22 अध्याय के 1 में हम पाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। परमेश्वर ने इसराइलियों को जंगल में 40 वर्ष तक परखा या परीक्षा की। यह सवाल खड़ा करता है, क्या प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में गिर सकता था? नहीं, प्रभु यीशु नहीं गिर सकता था। तब क्या यह परीक्षा वैध थी? यह एक परख थी। सभी नई चीजों को परखा जाता है। उदाहरण के लिए टायर और मोटर गाड़ी को परखा जाता है। निर्माता दूरदर्शन में आपको नई कार दिखाता है और उसे और इसे कच्ची सड़क में या उबड़ खबड़ सड़क पर चलाकर आपको दिखाया जाता है कि गाड़ी कितनी मजबूत है। सब कुछ परखा जाता है, और अगर कोई सामान टूट जाता है तो यह निर्माता कंपनी के लिए लज्जा की बात होती है। प्रभु यीशु मसीह नहीं गिर सकता था, सो क्या यह वैध था? हाँ था। और मुझे एक साधारण कहानी के द्वारा इसका उदाहरण देने दीजिए। विदेश के पश्चिम टेक्सास में एक नदी के दो मुहाने रहते हैं। नदी में पतली लकड़ी के लगे कांटी में जंक लगने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं रहता था। यहाँ एक सूखी नदी थी। यद्यपि जाड़े में आप इसमें एक नाव या जहाज को भी तैरा सकते थे। एक साल बाढ़ आई और रेल मार्ग पुल को बहा ले गई। तुरंत संता के रेल मार्ग के कार्यकर्ताओं ने नया पुल बनाने के लिए वहां पर पहल की। जब पुल पूरा हुआ तो उन्होंने पुल पर दो रेलवे इंजन रखे और दोनों को एक शहर से जोड़ा। इस छोटे शहर में एक साथ दो इंजन की सीटी बजते हुए लोगों ने कभी नहीं सुना था, सो हर एक आदमी पुल के पास दौड़ आया। वहां पर 27 लोग थे। भीड़ में से एक बहादुर आदमी ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? इंजीनियर ने उत्तर दिया, हम लोग पुल को परख रहे हैं। जवान आदमी ने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि यह टूट जाएगा? इंजीनियर ने लगभग व्यंग करते हुए कहा, यह नहीं टूटेगा। जवान ने आश्चर्य के साथ पूछा, यदि आप जानते हैं कि यह नहीं टूटेगा तो आप इंजनों को पुल में क्यों रख रहे हैं? इंजीनियर ने कहा, प्रमाणित करने के लिए कि यह नहीं टूटेगा। मेरे मित्र, प्रभु यीशु की परीक्षा भी इसी तरह की थी। उसने हमें दिखाया, जिसे हम इब्रानियों के पत्र 7:25-26 पद में पाते हैं, जो हमारा एक उद्धार करता है, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इस तरह से हुई कि हमारी परीक्षा उस तरह से कभी नहीं हुई है। जब हमारी परीक्षा होती है तो हमेशा एक टूटने का बिंदु या सीमा होती है। जब हम टूटने की सीमा तक पहुंचते हैं तो हम टूट जाते हैं और उसके बाद दबाव को हटाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह से दबाव को कभी भी नहीं हटाया गया। उसकी परीक्षा तीन प्रकार की थी, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। प्रभु यीशु की परीक्षा शारीरिक क्षेत्र में हुई। हम लूका 4:3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। मेरे मित्र, शैतान ने प्रभु यीशु को अपराध करने के लिए नहीं कहा। रोटी जीवन का आधार है और उसकी एक जरूरत है। एक अवसर पर प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, दूसरे अवसर पर उसने 4,000 लोगों को खिलाया। हवा ने अदन की वाटिका के बीच में उस पेड़ पर दृष्टि डाली और देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और उसने उसे खाया। पहला योना की पत्री 2:16 में योना इसे शरीर की वासना या शरीर की अभिलाषा कहता है। आप जानते हैं कि आदमी को जीना ही है और जीने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता है। आज यह अधिकांश लोगों का दर्शन शास्त्र या तर्क शास्त्र है। भीड़ की मांग उपद्रवी की शिकायत है। हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? अधिकांश लोगों के लिए जीवन का अर्थ यही है। लोग बेईमान होंगे, चोरी, जुआरी, शराब बेचना और शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी तरीका को अपनाएंगे। महिलाएं एक फरदार और अच्छे कपड़े और हीरे के अंगूठी के लिए अपनी इज्जत बेचेंगी। शैतान ने मनुष्य के प्रति अपनी नीच दृष्टि प्रकट की जब उसने अय्यूब 2:4 में परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। यह सच नहीं है क्योंकि अय्यूब ने समर्पण नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराने के लिए आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, का इस्तेमाल किया। हम लूका 4:4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। प्रिय मित्र, हम यहाँ पर पाते हैं कि इस परीक्षा का संबंध उससे था जिसे योना आंखों की अभिलाषा कहता है। अदन की वाटिका में हवा ने उस पेड़ के फल पर दृष्टि डाली और देखा कि वो देखने के लिए अच्छा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया और उसे इस संसार के राज्यों को दिखाया और उसे उन्हें देने की पेशकश की। संसार के राज्य में महान रोमन साम्राज्य शामिल था, परंतु प्रभु यीशु क्रूस के मार्ग द्वारा सिंहासन के रास्ते पर जा रहा था। शैतान कह रहा था, क्रूस को छोड़ दो। 1 कुरिन्थियों 1:18 में पौलुस कहता है, नाश होने वालों के लिए निकट क्रूस की कथा मूर्खता है। जब शैतान सिंहासन की ओर जाने के लिए एक आसान मार्ग की पेशकश करता है तो दुख के रास्ते को अपनाना कितनी मूर्खता की बात है। प्रिय मित्र, मुझे कुछ कहने दीजिए जो आपको कुछ धक्का पहुंचा सकता है। यीशु मसीह के बिना इस पृथ्वी पर राज्य बनाना और उसे पाने की कोशिश करना शैतानी है। केवल दो ही शासक हैं, प्रभु यीशु मसीह और शैतान। यदि आप यीशु का आदर नहीं करते हैं तो आपको शैतान का आदर करना पड़ेगा। 1 कुरिन्थियों 2:2 में पौलुस ने कहा, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। लूका 4:9-13 पद में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठोकर लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मित्रों, हम देखते हैं कि हवा ने अदन की वाटिका के बीच में पेड़ के फल की अभिलाषा की, क्योंकि वो किसी को बुद्धिमान बना सकता था। पहला योना 2:16 में योना इसे जीवन का घमंड की परीक्षा कहता है, या आत्मा और विश्वास के क्षेत्र की बात है। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह प्रदर्शन करे कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रदर्शन करो अर्थात साबित करो, तब लोग तुम्हें ग्रहण करेंगे। यह विश्वास नहीं था, यह अनुमान लगाना था, यह परमेश्वर का अनुमान लगाना था। विश्वास शांति में रहकर परमेश्वर की बात जोहना और उसकी इच्छा पर चलना है। यह दिलचस्प बात है कि जब शैतान ने भजन संहिता 91:11-12 से उद्धृत किया, उसने धर्मशास्त्र को गलत तरीके से बताया, ठीक जिस तरह उसने अदन की वाटिका में हवा को बहकाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया। प्रिय मित्र, यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई? यह दिखाने के लिए कि मेरा और आपका एक निष्पाप उद्धार करता है। वह पाप रहित, निर्दोष और बचाने में सामर्थी है। उसने साबित कर दिया कि सारा अधिकार और सामर्थ उसे दिया गया है। मेरे मित्र, आज हमारे लिए महिमा में एक व्यक्ति है जो हमें समझता है और हमारे साथ दया का वर्ताव कर सकता है। ऐसे उद्धारकर्ता का होना हमारे लिए एक अद्भुत बात है। पहला यूहन्ना की पत्री 2:1-2 में यूहन्ना लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे प्रभु यीशु पर भरोसा किया जा सकता है। मित्रों, हमने यीशु की परीक्षा की विस्तृत चर्चा की, अब हम यीशु का गलील और नासरत लौटना और अपने शहर के द्वारा इनकार किया जाना के बारे में चर्चा करेंगे। शैतान द्वारा परीक्षा करने के बाद प्रभु यीशु सामर्थी बन गया। हम लूका 4:14 में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। परीक्षा के बाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। किसी भी व्यक्ति के लिए परीक्षा इन दोनों में से एक का होना निश्चित है, या तो वह मजबूत होगा या कमजोर होगा। यह एक सेना प्रशिक्षण शिविर की तरह है जो आपको बनाएगा या तोड़ेगा। वास्तव में सेना के बारे में यह सही है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी यह मैं जानता हूं कि दुख और परीक्षा या तो आपको अच्छा बनाएगी या आपको कड़वाहट से भर देगी, आपको नम्र बनाएगी या कठोर करेगी। यह एक पुराना उदाहरण है जो कहता है कि वही सूर्य मोम को पिघलाता है लेकिन गीली मिट्टी के बर्तन को कड़ा करता है। यह तत्व का चरित्र या उसकी परिस्थिति है और न कि सूर्य की, जो मोम को पिघलाता है और मिट्टी के बर्तन को कठोर करता है। मेरे मित्र, परमेश्वर आपको कभी भी कठोर नहीं करेगा। उसने फिरौन के मन को कठोर नहीं किया। फिरौन पहले ही से कठोर मन का था और परमेश्वर ने केवल उसे खुले रूप से प्रकट किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के समान बना। धर्मशास्त्र इब्रानियों के पत्र 2:17 में इसे सिद्ध करता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। और इसलिए उसकी कठिन परीक्षा के बाद उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाने की आवश्यकता हुई। और यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा के बाद पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत हुई, तो कितना अधिक मुझे और आपको उसकी जरूरत है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इसलिए हुई ताकि हम उसमें खरे पाए जाएं और वो हमारा उद्धारकर्ता ठहरे। मित्रों, हमारे अध्ययन का समय आज यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के परीक्षा के द्वारा आपने इस बात को जान लिया है कि परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की इसलिए हुई ताकि हम उसे ग्रहण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू ही दाता विश्व।